गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर धार वर्ण रघुवर विमल यस जो दायक फल बुद्धिहीन तनु पवन कुमार विद्या देहु मोहि हर पवन पुत्र हनुमंत लाल की चंद्र भगवान की राठौर कैसेट के माध्यम से बात की पावन गाथा हम आप इसमें हम आपको ये दिखाएंगे और राम का अनुराग किस प्रकार से हुआ, भगवान से किस प्रकार से मिलता है, नदी के किनारे आ चुके हैं, दशरथ मरण में सुन चुके हैं,
तो आइए कंसा नदी के
आधी रात बीत जाती है, देखते हैं कि सारे अयोध्यावासी
उनको घेरे हुए लेते हैं।
देखा जब रघुवीर ने बीती आधी देखा जब रघुवीर ने जगा तुरंत सुमंत को बोले गए बूढ़े मंत्री मेरे इस बूढ़े मनोरथ को वासी और गृहस्थों के होते हैं तेरे साथ कहां प्रात होते होते हम सरी को पुर जन उस समय विवश होकर जाएंगे कोसल नगरी को। प्रभु राम कहते हैं कि हे मंत्रीवर, अर्धरात्रि का समय हो चुका है, आप इसी समय रथ को तैयार करने के पश्चात सूर्य निकलने से पहले पहले आप हमको तमसा नदी से उस पार कर दें। सीधे रास्ते को छोड़ करके आप दूसरे रास्तों पर चलें, ऐसे रास्ते पर चलें जहां पर पथरीला रास्ता पड़ता हो, क्योंकि अगर धूल भरे रास्ते पर आप चलते हैं तो उस पर रथ के पहियों के निशान बन जाएंगे और उन निशानों को देखते हुए अयोध्यावासी फिर हमारे पास चले आएंगे। और हे मंत्रीवर, आप ये भी समझते हैं कि वनवासियों का और गृहस्थ वालों का साथ कभी एक साथ नहीं हो सकता। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहां तलक है ये उचित लीला लीला धाम। मंत्री ने कहा, प्रभु आपका कहना तो सत्य है, लेकिन भगवान जरा इतना विचार करो, क्या आपको ये शोभा देता है? सोताई छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि समयोचित भी है तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। वनवास सब तुम है लोका था, ये है आवाज अयोध्या की। सुनंत कहने लगा है, प्रभु अपने भक्तों को सोता हुआ छोड़ करके क्या आपको जाना ये उचित लगता है? अगर ये उचित भी है फिर भी ये समय के अनुकूल विपरीत सा लगता है। अतः हे नाथ, ये सारे प्रजा की इच्छा है कि आप अयोध्या लौट चलें। प्रभु कहने लगे, हे मंत्री महोदय, शायद आपको ये नहीं मालूम कि यदि आज मैं इन प्रजा को अपने साथ में लेकर जाता हूँ तो कल लोग यही उंगलियां उठाएंगे कि शायद राम को यह अच्छा नहीं लगा कि भरत राज सिंहासन पर बैठे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्रजा को ही भड़का करके अपने साथ में ले लिया। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि आप देर ना करें और फौरन ही मेरे रथ को तैयार करके प्रात होने से पहले पहले आप मुझे तमसा नदी के उस पार कर दें। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमरी गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल कैरव चंद। उधर तो प्रभु तमसा नदी के उस पार जाते हैं और इधर जब सवेरे भक्त लोग जगते हैं अयोध्यावासी और अपने बीच प्रभु राम को नहीं पाते हैं तो उनकी दशा कैसी है? मित्रों, बड़ी दयनीय दशा है उन अयोध्यावासियों की प्रभु राम के बिना। मणि खो कर गति जो फण की हो, या जो चल पान मिल की हो।
बस वही अवस्था थी जैसे संपत्ति विहीन ये दीन की हो। समाज हो ताहे विकल, अरे त्यों ही सब अवध निवासी थे, इस समय बिना रघु राज विकल। काम कब करता है जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। जाए तो मरते हो, हर प्राणों तुम बड़े अभागे हो। प्राणेश बिना जो मरते हो, खो देने पर जो गति सर्प की होती है या जल से बाहर निकाल देने पर जो गति मीन की होती है, वैसी ही अवस्था मित्रों आज प्रभु राम के चले जाने पर अयोध्या वासियों की हो रही है। कोई कहता था चलो ढूंढो चारों ओर, चोरों की नाई कहां चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय तक यहीं तलक था साथ। आज अपने मन में विचार करते हैं कि चलो प्रभु आज चले गए तो क्या हुआ, 14 वर्षों के पश्चात तो प्रभु से हमारी मुलाकात अवश्य होगी। और आज सब अयोध्या की तरफ वापस जाते हुए कहते जा रहे हैं क्या कि अब रथ गया राम का दूर। अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर। यदि सावधान हम हो तो रथ के ही आगे सोते, होते चकनाचूर, होते चकनाचूर। अब रथ गया राम का दूर, अब जब तो चले गए रघुनंदन,
चले गए रघुनंदन,
फिर कैसे तो जिए ये प्रजाजन। बिछड़े हैं जीवन मूर, बिछड़े हैं जीवन मूर, अब रथ गया राम का दूर। इधर तो अयोध्या वासी अयोध्या में वापस जाते हैं, और उधर देखिए सुमंत मंत्री आज प्रभु से निवेदन करता है, किस समय, जिस समय प्रभु पृथ्वी का पलंग बनाते हैं, जिस समय सुमंत ने जानकी और प्रभु राम की ये दयनीय दशा देखी। कैसी दयनीय दशा, पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है। पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है, उस पर सोता है वो देखो दशरथ नंदन जो रघुवर है। जिसको वैदेही कहते हैं वो रही कुसाओं पर वो है। ये परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूबू निखाज गया, हर बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ। हर बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, वो आज तो डूब बिसाज गया। मंत्री आज अपने प्रभु की दयनीय दशा को देखता है, तो आज सुमंत मंत्री रो रो करके प्रभु से कहने लगा, हे नाथ मुझे आप क्षमा करें, देखा जाता है नहीं वन का ये श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ सन्मुख तैयार। हे प्रभु, अब आपका ये वन का श्रृंगार मुझसे नहीं देखा जाता, अतएव आपसे मेरा निवेदन है कि आप अयोध्या वापस लौट चलिए। माता कैकेयी की आज्ञा का पालन हो चुका, सरकार वन में विराज चुके, बहुतेरे हृदय के ऊपर नाथ वरदानों के धन गा चुके, अब चलिए महलों को चलिए। आपके चलते ही प्रभु जनता जो है वो जीवित हो जाएगी, अपने राजा को सभा के मध्य प्रजा फिर से मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले, अब बात ये बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या सूर। मंत्री महोदय, अगर आप हमें मानते हैं तो केवल हम आपसे एक ही प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी प्रार्थना? मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, आप चाहते हैं। तो हम उस चाहत के नाते तुम से बस यही मांगते हैं जल्दी घर जाओ तुम, 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, अरे कहाँ कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। हे प्रभु, आपका ये दुख मुझसे नहीं देखा जाता। प्रभु ने कहा, हे सुमंत, शायद आपको ये नहीं मालूम कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर दुख ना आया हो। हमारे वंश की ये परंपरा रही है, लोगों ने अपने प्राण देना सीखा है, लोगों ने अपने परिवार को रोते हुए देखा है, लोगों ने समस्त परिवार को बलवेदी पर चढ़ाते हुए देखा है, मगर कभी भी अपना वचन छोड़ना नहीं सीखा। और ये मित्रों सत्य है, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे वीर हो गए, ऐसे ऐसे बलवान हो गए जिन्होंने रोते हुए बच्चों को देखा, सिसकती हुई बेटियां देखी, मगर उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कहा गया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास के मानस के अंदर, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखी ये चारी। आपद काल परखी ये चारी। अगर आपको अपने धैर्य को आजमाना है तो आपत्ति के समय पर आजमाएं, अपने मित्र को आजमाना है तो आपत्ति के समय पर आजमाएं, अपने धर्म को आजमाना है तो आपत्ति के समय पर आजमाएं, अपनी नारी को आजमाना है तो आप आपत्ति के समय पर आजमाएं। कैसे कैसे महान वीर हो गए, उनमें से ही एक राणा प्रताप की कहानी आती है। राणा जी अपने परिवार को लेकर के वन के अंदर घूम रहे हैं। आज 6 दिन हो गए वन में भटकते हुए। उनके साथ में उनकी एक 6 वर्ष की कन्या राणा जी एवं उनका परिवार उनके साथ है। 6 दिन जब बीत गए, बंधुओं चलो, राणा जी तो बड़े थे, भूख की ज्वाला को बर्दाश्त कर गए, मगर आज वो जो 6 वर्ष की कन्या थी, जब भूख की ज्वाला को न सहन कर पाई, अपने पिता राणा से तुतला तुतला कर कहने लगी कि मारे भूख से मेरे प्राण जा रहे हैं, हे पिता मुझे कुछ भोजन दीजिए। राणा रोकर कहने लगे, हे बेटी, तूने अपनी माँ से नहीं कहा? कहा, मैंने अपनी माँ से कहा था, मगर जानते हो हे पिताजी क्या हुआ? माँ ने घाछों की लोती दी थी मुझको खाने को, छोटे का पानी पी कल वो बोली भग जाने को। घाछों की लोती दी थी मुझको खाने को, छोटे का पानी पी कल वो बोली भगजाने को जब माँ से मेरी भूख की ज्वाला न देखी गई पिता तो उसने थोड़ी घास काटी और घास की रोटियां बनाकर मुझको देकर कहने लगी माने घाछों की लोटी दी थी मुझको खाने को। मैं उन घास की रोटियों को खाकर ही अपनी भूख की ज्वाला को सहन कर लेती मगर जानते हो पिता क्या हुआ कुछ दूल यहाँ पल बैठी मैं वो लोटी खाती थी जो पहले छुना चुकी हूँ वो देश गीत गाती सच कहती मैंने केवल एक आध कॉल खाया था अब तक बिलावले भागा जो इस आया था तब तक बिलावले भागा जो इसीलिए आया था। मैं घासों की रोटियों को खा करके ही अपना समय गुजार लेती यहाँ पर थोड़ा दूर पर बैठी हुई मैं वो घास की रोटियां हे पिता खा रही थी। इतने में एक बिलाव आया और वो घास की रोटियां लेकर भाग गया। मैंने तो ये सुना है कि आप चित्तौड़ के राजा हैं, लेकिन हे पिता अगर राजाओं की बेटियां इसी प्रकार से घास की रोटियों के लिए तरस तरस कर मरती रहीं, तो एक दिन वो आ जाएगा कोई भी लड़की किसी भी राजा की राजकुमारी बनना पसंद नहीं करेगी।
सुनती हूँ तू लाजा है मैं प्याली छोनी तेली क्या दया न तुझको आती ये दशा देख कल मेरी वो कौन छत्रु है जिसने छेना का नाच किया है हम तुम छब को है पिताजी जिसने बन बाच दिया है एक छोटी छी पैनी छी तलवार मुझे भी दे दे मैं रणचंडी बन जाऊं रण करने की आज्ञा दे कन्या की बातें सुनकर जो पड़ी अचानक रानी राणा की भी आंखों से बहता था अविरल पानी स्वतंत्रता थी ये कैसी थी आजादी जिसके ऊपर बच्चों ने अपनी मुक्तता बिखरा दी
अरे सुमंत मंत्री इस संसार में आपत्ति का समय किस पर नहीं आया लेकिन क्या किसी ने आपत्ति के समय में अपना धर्म गंवा दिया अपना धैर्य छोड़ दिया। इसलिए मेरा निवेदन केवल आपसे यही है कि आप अयोध्या वापस लौट जाएं।